ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ किया। इससे हर आय वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। इसमें एक पंचकर्म अस्पताल, दवा निर्माण के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक खेल चिकित्सा इकाई, एक केंद्रीय पुस्तकालय, एक आईटी और स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्र और 500 सीटों वाला सभागार शामिल है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली में विभिन्न एम्स में सुविधा सेवा विस्तार का भी उद्घाटन किया, जिसमें एक जन औषधि केंद्र भी शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तथा ओडिशा के बरगढ़ में एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अंतरिक्ष से लेकर विद्युत वाहन में नई प्रौद्योगिकी सहित प्रत्येक क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को अधिकतम रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू और कश्मीर में जम्मू के अखनूर सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। कल आतंकवादियों ने सेना के काफिले की एम्बुलेंस पर हमला किया था। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ समाप्त हो चुकी है। हालांकि आतंकवादियों के शव बरामद करने के लिए इलाके में तलाशी अभियान जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। राजनीतिक दल आगामी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की अद्यतन सूची जारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कामठी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने साकोली से नामांकन भरा। शिवसेना की मनीषा वायकर ने जोगेश्वरी पूर्व से, संजय शिरसाट ने छत्रपति संभाजीनगर दक्षिण से नामांकन भरा। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 20 नवंबर को 8 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। पर्चों की जांच कल की जाएगी और उम्मीदवार 1 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी। केरल में कासरगोड जिले के नीलेश्वरम में कल रात एक मंदिर में उत्सव के दौरान पटाखे फटने के कारण हुए विस्फोट में आग लगने से लगभग 150 लोग झुलस गए। इस हादसे में घायल हुए 97 लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये घटना नीलेश्वरम के वीरारकावु मंदिर में हुई। वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्सव मनाने के लिए जुटे थे। पुलिस ने मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने वर्तमान भू राजनीति की जटिलताओं, इसकी चुनौतियों, संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।